के मिशन को पूरा करने के लिए इस संसार में सभी प्रकार के कार्य करते रहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जो कर्मी जन अधिकाधिक पवित्र होते हैं वे भगवान के चरण कमलों पर अपने कर्मों के फलों को अर्पित करने का प्रयास करके स्वरूप सिद्ध जीवों के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। यद्यपि इसे कर्म मिश्र भक्ति माना जाता है किंतु ऐसी मिश्रित भक्ति क्रमश शुद्ध भक्ति में बदल जाती है। चूंकि पवित्र सकाम कर्मी क्रमश अपने को अपने परिश्रम से अर्जित पुरस्कार के भोगने की बेहूदी विचारधारा से अपने को विलग कर लेते हैं, अतएव शुद्ध भक्ति से उन्हें भरपूर सौभाग्य प्राप्त होता है। वैसे तो ये तात्पर्य काफी लंबा है, लेकिन हम केवल दो दो पैराग्राफ पर ही चर्चा करेंगे आज। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाम्बितांश्च हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतृषे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर्ममंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधामदनमोहनम्। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम सारे भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जिनसे जिनसे आप सभी से ही दिन प्रतिदिन हर हर मुहूर्त में हम प्रेरणा लेते हैं। हाँ, जो कुछ भी शिक्षाएं आप लोगों ने दिया हुआ है उसको प्रयास किया है नोट करने का, ताकि उसको हाँ अपने जीवन में हमेशा हर हर दिन उसको याद दिलाए हम। तो उसमें से कुछ चीज़ हमने नोट किया जो जो आज आपके साम मतलब आपका ही पॉइंट्स आपके सामने ही प्रस्तुत करने जाएंगे। हरे कृष्ण। तो इसमें ये जो श्लोक है 11वें स्कंद में आता है, जिसमें जिसमें निमि महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से हाँ जिज्ञासा करते हैं नवयोगेंद्र महाराज के सामने। हाँ, नवयोगेंद्र महाराज जो कि हाँ उसमें से सबसे पहले हैं श्री श्रीमान कवि महाराज। कवि महाराज सबसे पहला उत्तर देते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जैसे कि सामान्य सामान्य जनता को आजकल आजकल के इसमें लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें हमें आध्यात्म में नहीं जाना है। हाँ, ये शास्त्र के अनुसार ये आध्यात्मिक जगत के प्रश्न हमें नहीं उठाना है, लोग बोलते हैं। हाँ, हमें तो मॉडर्न मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना है, हमें आधुनिक जीवन देन जीना है। तो आज हम इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस तरह से आधुनिक जीवन में रहते हुए भी हमें आध्यात्मिक जीवन को हाँ अपनाना है। और आधुनिक जीवन तो ज़रूरी है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, लोगों के साथ रह रहे हैं, लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें हाँ आधुनिक जीवन जीना है, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन महत्वपूर्ण क्यों है, हाँ, और उसको क्यों क्यों अपनाना चाहिए। तो ये हम चार भाग में इसको लेंगे, जैसे कि आध्यात्मिक जीवन को क्यों करना चाहिए सबसे पहला, दूसरा क्यों क्यों का अर्थ पता चलने के बाद इसको कैसे करना है, फिर तीसरा इसको करने से लाभ क्या होगा, और चौथा हमारे पास हमारे पास कोई शास्त्रीय प्रमाण है क्या, कोई आधुनिक आधुनिक जमाने में कोई प्रमाण है क्या जो जो इस मार्ग को अपना रहे हैं। तो इस चार भाग को विशेषतः हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि आधुनिक जीवन, आधुनिक जीवन में सब कुछ कुछ कठिनाइयां है क्या। लोगों के पास टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल्स बढ़ रहे हैं, लैपटॉप्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ कम हो रही है क्या। लास्ट वीक एक फ्रेंड के साथ चर्चा कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि इतनी सारी सुविधाएं लोगों के पास बढ़ चुकी है, घर आ चुका है, 1 BHK का 2 BHK हो चुका है, बंगला बन चुका है, लेकिन लेकिन जो भय जो है हमारे जीवन में वो बढ़ता ही चले जा रहा है। हाँ भय, लोग ऑफिस में जाते हैं, बॉस से भय रहता है, घर में आते हैं तो परिवार से भय हो जाता है, हाँ जब लोगों के साथ डीलिंग करते हैं तो लोग मतलब इतना इतना सहन शक्ति लोगों लोगों के पास अभी छूट चुका है कि किसी भी समय उन हाँ फाइट उत्पन्न हो सकता है, मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ये जो भय है लोगों को सतत प्रतिदिन सुबह उठने से लेके इवन इवन उठने से लेके सोने तक, क्या रात को स्वप्नों में भी लोगों को भय लगता है। हाँ तो ये भय से जब भी हम छुटकारा प्राप्त करेंगे तब हम स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। कोई भी कार्य जब भी हम करेंगे हाँ तो हम मन से तन से बुद्धि, हाँ जिस तरह से तात्पर्य में कहा गया ना, मन बुद्धि वचन कार्य इंद्रियों से मतलब पूरा स्वतंत्र जीवन से हम कार्य कर सकते हैं। तो ये भय भय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है। हाँ तो क्यों करना चाहिए का अर्थ क्या, हाँ इसमें आंसर मिलता है कि हमें हमें भय से छुटकारा प्राप्त करना है, और भय से छुटकारा प्राप्त करने से क्या होगा, हाँ हम आगे के पड़ाव में जा सकते हैं कि अच्छा इस भय से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें हमें भक्ति मार्ग को अपनाना है। अब भक्ति मार्ग को अपनाने से भय भय से मुक्ति मिलेगा क्या, हाँ तो यहाँ पर सुंदर तरीके से कवि महाराज बताते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहला प्रश्न निमि महाराज पूछते हैं कि इस बद्ध जीव, ये बद्ध जीव जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये इस बद्ध जीव के लिए सर्वोच्च शुभ कार्य क्या है। वॉट इज द सुप्रीम गुड फॉर दिस कंडीशन सोल। हाँ उसके अंदर सबसे पहले बताते हैं कि ये भय के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं वो, कि सबसे पहला मुद्दा ये करते हैं कि यस भय भय से मुक्ति कैसे प्राप्त करना है, भक्ति करके। बोलते भक्ति करके, लेकिन करना कैसे है इसको। हाँ तो उसके बाद वो मार्ग बताते हैं कि आपको भागवत धर्म सनातन धर्म का अपनाना है। भागवत धर्म ये तो बहुत बड़ा विस्तार है, हाँ लेकिन बताते हैं कि इस भागवत धर्म का, फिर बताते हैं कि इसका लाभ क्या है। बोले कि इसका इतना बड़ा लाभ है कि या नास्था या नरो राजन न प्रमाद्येत कदाचित् धावन निमील्य वा नेत्र, आँख बंद करके भी धाए मतलब धावन वो भागेगा, आँख बंद करके भी फिर भी न स्खलेत, वो गिरेगा नहीं, और गिरेगा तो भी एक आचार्य बताते हैं गिर भी पड़ेगा तो भी वो गोविंद के चरणों में गिर पड़ेगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि इस मार्ग का इतना बड़ा लाभ है कि बद्ध जीव कितना कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान के चरणों तक प्राप्त कर सकता है। और लाभ तो बता दिए कि यस हाँ, कि आंख बंद करके भी मीन्स आप भागो, आप पहुंच जाओगे, लेकिन इसको करें कैसे? हाँ, तब जाके हम ये इस श्लोक पर आते हैं कि काये न वाचा मनसेन्द्रियेर्वा। ये श्लोक और कहाँ पर आता है आप आप में से कोई लोग बता सकते हैं, जो कि रेगुलर महाराष्ट्र में यूज होता है ये? हाँ, गणपति आरती में रोज रोज गणेश चतुर्थी के समय में हर हर घर में आंख बंद करके ताली बजाते हुए लोग गाएंगे, लेकिन गणेश चतुर्थी होने के बाद हरि बोल। हाँ, तो इसका इसका अर्थ ये है कि काये न वाचा, बड़े बड़े सुंदर तरीके से कवि महाराज यहाँ पर बताते हैं, और प्रभुपाद के तात्पर्य में बताते हैं कि काये न वाचा वाचा मनसा इंद्रियेरवा। हाँ, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मना से हमें सारे कार्य, जो कुछ भी हम कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, हमारे दिनचर्या में, हमें उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हाँ, भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कोई भी हाँ कोई भी कार्य कर सकते हैं क्या हम? हाँ, तो आचार्यगण बताते हैं कि पाप कार्य नहीं कर सकते हैं, जो शास्त्र के अनुसार विधि दी गई है उस शास्त्र के अनुसार हमें कार्य करना है, और उस कार्य को चाहे हम गृहस्थ जीवन में हो, चाहे हम मंदिर में रहे, चाहे हम जॉब कर रहे हो, हाँ कहीं पे भी रहते हुए उस कार्य को हम भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद सुंदर तरीके से कवि महाराज बताते हैं कि ये जो भय भय जो सारे सारे जीवों को संकट में डाला हुआ है प्रतिदिन प्रति मुहूर्त, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम मूल कारण को जानेंगे नहीं, तब तक हमें उससे कैसे कैसे उसको जड़ से काटना है हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका रूट कॉज जो कि मूल कारण, ये बताते हैं कि भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्यात्। हाँ, बोलते हैं कि इसका सबसे मूल कारण यह है कि यह बद्ध जीव अपने आप को शरीर समझ बैठा है। वो अपने आप को शरीर समझ बैठा है, और ये माया के आवरण के कारण अपने आप को शरीर समझ बैठा है, लेकिन इससे ऊपर उठने के लिए क्या करना है? एक बुद्धिमान व्यक्ति को भक्ति का येषाम गुरुदेवतात्मा, गुरु के वाणी का पालन करना चाहिए, गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए, और गुरु ने जो मार्ग बताए हैं शुद्ध भक्ति के, भगवान की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताए, वो मार्ग को अपनाना है। और इससे क्या होगा, जब ये रूट देखिए कितना सिंपल है ये। हाँ, हमारे पास गुरु है, साधु है, शास्त्र है, और जो कुछ भी दिया उन्होंने क्या दिया है? नवदा भक्ति दिया है। प्रभुपाद ने कितना सारा जीवन उन्होंने कष्ट किया हमारे पास ये सारे भक्ति के अंगों को देने के लिए। हाँ, कितना सरल और सिंपल है कि नहीं? लेकिन फिर भी हमें बस क्या करना है, ये जैसे कि कवि महाराज बता रहे हैं कि ये शरीर रूपी अज्ञान से हटकर हमें आत्मा के स्तर पर गुरु का शरण लेना चाहिए, और खास करके उनके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा, हाँ इससे क्या होगा कि नेक्स्ट मतलब अगले अगले श्लोक में बताते हैं कि ये जो जीव है अपने आप को शरीर मानने के कारण इस भौतिक संसार को भी क्या बोलते हैं उसको, रियल रियल को क्या बोलते हैं, इस भौतिक संसार को भी सच्चा सच्चा मानने लगता है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि वो दुख भोगने लगता है कि नहीं? पहले तो शरीर शरीर रूप में ये फर्स्ट लेवल का अंधकार हो गया। दूसरा, जो कि इसने अपने आप को शरीर मानने लगा, इस संसार को भी अपना मानने लगा, और उससे क्या हुआ, वो हमेशा हाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जरावादी में फंसते रहेगा, फंसते रहे। तो इसका इसका मार्ग ये बताया है उसी श्लोक में कि अपने अपने मन को संयम करना है, अपने मन को दृढ़ता करना है कि हमें यस हमें गुरु के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, प्रभुपाद ने जो मार्ग दिया है उसका पालन करना है। यहाँ पर बताते हैं कि अभी ठीक है, आपने आपको इस भय से छुटकारा कैसे प्राप्त करना है पता तो चल गया, लेकिन लेकिन इस भयभीत अवस्था से ऊपर उठने के बाद, हाँ इस भयभीत अवस्था से ऊपर उठने के बाद आपको करना क्या है? हाँ तो यहाँ पे बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जब भी गुरु के आदेशों का पालन करता है और भक्ति मार्ग को अपनाता है, तो दिनचर्या में जितने भी कार्य करते हैं वो स्वतंत्र जीवन से करता है, और वही चीज़ उसे जब लाभ होता है इस भक्ति के कार्यों से, वो दूसरों को क्या करता है, दूसरों को प्रचार करता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर बताता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सारे आसक्तियों को त्याग कर इस संसार के, जो कि उसने उसने अपने आप को शरीर नहीं माना है, जो कि सारे कार्य वो आत्मा के स्तर पर कर रहा है, वो वही चीज़ जो इसे लाभ मिला है वो उसे लोगों तक पहुंचाने का प्राप्त करता है। और इसे क्या करता है वो, इससे यहाँ पर ये बताते हैं कि वो भगवान के नाम का गुणगान करने लगता है, भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करने लगता है, जो कि सारे बद्ध जीव इस संसार में ना कि इसको लाभदायक है, बल्कि इस संसार में जितने भी बद्ध जीव है सबको लाभदायक है। तो पूरे उत्साह के साथ, हाँ जैसे हमारे लक्ष्मी नारायण प्रभु जो जो टूर देते हैं हमें, हमें तो काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि वो दिन दिन प्रतिदिन दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया तो ये कितने कितने उत्साह के साथ इतने सारे लोगों को कीर्तन कीर्तन संकीर्तन करने में प्रोत्साहन देते हैं। हाँ तो ये प्रचार कार्य के बाद क्या होता है, यहाँ पर कवि महाराज बताते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन का शरण लेता है, हरि नाम संकीर्तन का गुणगान करता है और ऐसे प्रचार कार्य करता है, हाँ वहाँ पर बताते हैं एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यथोरोदिति रौति गायत् उन्मादवन्नित्यति लोकबाह्याय। वो बहुत बहुत उन्माद अवस्था में कीर्तन करने लगता है, और बताते हैं कि ऐसे हरिनाम संकीर्तन जो कि प्रेम पूर्वक करने से ऐसे भक्त को प्रेम भक्ति की प्राप्त होती है, और उसके उसके कुछ कुछ सिम्टम्स, जैसे कि कुछ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं लक्षण, हाँ जैसे जैसे कुछ लक्षण दिखता है कि हाँ क्या लक्षण बताएं यहाँ पर, हसत यथो रोदति रौति गायत, वो पूरे हरिनाम का जोर से कीर्तन करता है और नृत्य करने लगता है। हाँ फिर बताते हैं कि ऐसे ऐसे प्रेम भक्ति की प्राप्ति के बाद, हाँ वो इस संसार में जितने भी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि कवि महाराज ने कहा कि ये बद्ध जीव का मूल कारण क्या है भय का, हाँ अपने आप को शरीर मानने लगता है, लेकिन जब ऐसे स्तर से गुजरने के बाद वो इस संसार में जितने भी वस्तुएं देखता है वो भगवान से संबंधित, जैसे बोलते हैं ना कि एक धनवान व्यक्ति जब एक घने जंगल में घुसता है वो देखता है कितनी सूखी लकड़ियां हैं, हाँ उसे क्या करना है, उनको लेके जाना है और फैक्ट्री में लेके जाना है और पेपर इंडस्ट्री में लेके जाना है, और कितना अच्छे से अच्छा पेपर हम बनाएं और लोगों तक वितरण करें और बिजनेस हो। हाँ एक एक क्या बोलते हैं उसको, इंद्रिय भोग करने वाला व्यक्ति जब जाए जंगल में, हाँ, तो वो उस तरह के विचारधारा करने लगेगा। लेकिन एक भक्त जब ही जाए, हाँ, तो वो इस संसार के सारे वस्तुओं को कैसे भगवान के लिए हम उसको अर्पण करने का प्रयास करेंगे। एक सुंदर फूल देखेगा तो क्या करेंगे वो, कैसे हम इस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पण करने का प्रयास करेंगे। तो ये स्तर पे आते हैं, जैसे कि वो इस संसार के सारे वस्तुओं को सम्मान देता है। कैसे सम्मान देता है कि वो दिन प्रतिदिन सोचते रहता है कि कैसे हम इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाए। हाँ, इसके बाद उनको क्या है, उनको ये स्तर से जाने के बाद, अभ्यास करने के बाद, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नवदा भक्ति का पूरे अच्छी तरह से विवरण किया गया है। तो ये अभ्यास करने के बाद, इन भक्ति के अंगों का अभ्यास करने के बाद, उनको अनुभव होने लगता है, भगवान भगवान का अनुभव, और उनके भक्तों के साथ रहकर उन्हें इस भौतिक संसार में, हाँ, इस भौतिक संसार से धीरे 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 क्या होने लगता है, विरक्ति होने लगता है। हाँ, तब क्या होता है, यहाँ पर बताते हैं कि और ये जो विरक्ति है, यहाँ पर बहुत सुंदर एक उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को भूख लगता है ना, भूख लगने के बाद क्या होता है, भूख लगने के साथ ही साथ उनकी शक्ति भी थोड़ी कम रहती है। हाँ, तो भूख लगने के बाद, शक्ति कम होने के बाद, हम क्या करते हैं, जनरली प्रसाद खाते हैं कि नहीं। प्रसाद खाने के बाद ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाती है। हम कुछ ऐसा करते हैं क्या कि हाँ ठीक है, चलो भूख लगने के लिए प्रसाद खा लो और शक्ति लाने के लिए कुछ और कर लो, ऐसा कुछ प्रयास करते हैं? नहीं, मतलब प्रसाद खाने के बाद, खाद्य पदार्थ इस शरीर में डालने के बाद, भूख मिटते ही साथों साथ शक्ति भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो कि यहाँ पर शब्दों का तुष्टि पुष्टि ही, हाँ, उसे तृप्ति भी मिलती है और शरीर को पोषण भी मिलता है, शक्ति भी मिलता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि ऐसी भगवान की भक्ति करने का जो फल है, वो आपको दोनों तरीके से होगा। कैसे, आपको इस भौतिक संसार में, हाँ, इस संसार से विरक्ति भी होगी और साथ ही साथ भगवान से प्रेम भी उत्पन्न होगा। भौतिक संसार से विरक्ति होने के बाद क्या करेंगे हम, हाँ क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो यहाँ पर बताते हैं कि इस भौतिक संसार से विरक्ति होने के बाद हमें भगवान का शरण लेना है, भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। ऐसे, हाँ, ऐसे सुंदर तरीके से कवि महाराज यहाँ पर बताते हैं कि जब इन इन स्तरों से, जब भी एक बद्ध जीव, जब भी ये दिए गए शास्त्रों के अनुसार अभ्यास करने लगता है, तब उनके जीवन में शुभ, हाँ, गुड फॉर्च्यून, सौभाग्य का उत्पन्न होता है। और इस संसार में सारे बद्ध जीव, चाहे वो पशु हो, जीव जंतु हो, सारे किसी भी शरीर में हो, सौभाग्य की खोज में है। और यहाँ पर हमारे शास्त्र बड़ी सुंदर तरीके से 10 श्लोकों के अंदर कैसे सौभाग्य की प्राप्ति करना है और सर्वोच्च शुभ कार्य क्या है, सुंदर तरीके से यहाँ पर बताए हैं कि कैसे नवदा भक्ति का पालन करके, चाहे श्रवण कीर्तन अर्चनम, हाँ, प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम, जो कि सुबह के सायंकाल प्रोग्राम में जो दिया है उन्होंने, वो सारे सारे अंगों का अच्छी तरह से पालन करके हम ये शास्त्रों के अनुसार दिए गए वाक्यों का हम पालन कर सकते हैं। हमने दूसरा दूसरा मुद्दा के ऊपर चर्चा किया कि इस भक्ति को कैसे करना है। सबसे पहला क्या था कि क्यों करना है कि नहीं, क्यों करना है मीन्स भय से मुक्ति है, भय से मुक्ति प्राप्त करना है। दूसरा कैसे करना है, तीसरा पॉइंट ऐसे आता है कि अब इसको इसको करना तो है, लेकिन शास्त्र में किसी ने किया है क्या? है कि नहीं? कवि महाराज ने बता तो दिया कि यस काये न वाचा मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत स्वभाव। लेकिन लेकिन थोड़ा सा शास्त्र में हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज ने अच्छी तरह से इसके ऊपर विवरण किया, और अभ्यास, और अम्बरीश महाराज ने, अम्बरीश महाराज ने स्वयं उन्होंने मतलब अपने चरित्र से ये भी बताया कि हमारे सारे अंगों का, एक एक अंगों का हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हाँ यहाँ पर बताते हैं, सवे मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचाम शिवैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकाराच्युत तत्कथोदये। सवे मन कृष्ण, हे मन कृष्ण के चरणों में अपना मन अर्पण करो। वाचाम से वैकुंठ, इस मुखारविंद से भगवान के कीर्तन का गुणगान करना है, भगवान के हरिनाम संकीर्तन का गुणगान करना है, और इन हाथों से क्या करना है, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर का मार्जन करना है, और श्रुतिम चकाराच्युत तत्कथोदये, इस कर्णों से भगवान के गुणों का श्रवण करना है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, इन नेत्रों से भगवान का सुंदर दर्शन करना है, जो कि हर दिन वृंदावन बिहारी इतने आ, आ, इतने दया करके, इतने अच्छे अच्छे श्रृंगार से दर्शन देते हैं हमें, मदन मोहन जी इतने सुंदर दर्शन देते हैं। हाँ तो इन नेत्रों से हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस जाकर दर्शन करना है। फिर क्या बताते हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रा स्पर्शंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या रसनाम तदर्पिते। हाँ तुलसी महारानी का सेवा करना चाहिए। हाँ ऐसे ऐसे विविध नाना प्रकार के बताएं इसमें कि कैसे ये सब कार्य जो हमें करना है भक्तों के संग में करना है। तद्भृत्य गात्रा स्पर्शंग संगमम, क्योंकि भक्तों के स्पर्श मात्र से इस भवबंधन से छुटकारा प्राप्त होता है, और हमारा भाग्य इतना इतना बड़ा है कि हमें दिन प्रतिदिन हर मुहूर्त में भक्तों का संग मिलता है। फिर क्या बताते हैं अंत में, पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। हाँ तो इसमें क्या बताते हैं कि इस पैर से, इस चरण से हमें क्या करना चाहिए, धाम धाम के पास जाना चाहिए। हाँ धाम धाम जाना चाहिए, लेकिन लेकिन हमारे तो जस्ट 2 कदम दूर पर ही धाम है। हमें उस मतलब उसके लिए भी इतना कुछ टिकट निकालने की भी जरूरत नहीं है, इतना बड़ा भाग्य है, मतलब वो भाग्य की सीमा ही नहीं है कि कितना कितना हमारे गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है। फिर हमें क्या है, उसके बाद फिर बताते हैं कि ये सारे अंगों को उत्तम श्लोक जनाश्रया, यदि हम इफ वन टेक शेल्टर ऑफ अ डिवोटी, भक्तों का शरण लेकर ये सारे अंग कर सकते हैं, है कि नहीं? मदन मोहन जी को हम प्रार्थना करते हैं ना, जयताम सुरतो पंगोर। हाँ बलराम शक्ति प्रभु बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि पंगोर पंगोर मीन्स पंग क्यों है। हाँ एक व्यक्ति पूछ रहा था पिछले हफ्ते कि आप बताते हैं कि जैसे कि वे एक व्यक्ति के पास आँख है, सुंदर सुंदर आँख है, लेकिन उस आँख से देख नहीं पा रहा, क्या बोलेंगे हम उनको, अंधा बोलेंगे, है कि नहीं? आँख तो है लेकिन अंधा है, क्यों? क्योंकि इस संसार की चीज को देख नहीं पा रहा है। तो उसी तरह शास्त्र में बताते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, इतने सारे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और उसके बाद भगवान ने ये जो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, इसका कुछ एक उपयोग है। जैसे एक वॉशिंग मशीन दिया हुआ है, उसको कपड़े धोने के लिए दिया हुआ है, उसको आप लेके कुछ गाड़ी चलाएंगे, होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं? एक गाड़ी दिया है उसको आप वॉशिंग मशीन। जय जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की, जय श्री गौरांग महाप्रभु की। तो ठीक उसी तरह भगवान ने मनुष्य शरीर दिया हुआ है, इसका उपयोग कैसे करना है बताए हैं। इसको इंद्रियों भोग करने के लिए नहीं बनाए हैं, इसको बनाए हैं जैसे कि अम्बरीश महाराज ने कहा ना, सवे मन कृष्ण पदारविंदयोर। हाँ, इस मन को भगवान कृष्ण में अर्पण करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इंद्रियों भोग करते हैं। मतलब जिस जिस चीज के लिए इस हाथ को बनाया गया है वो चीज वो नहीं कर रहा है। मतलब ये हाथ क्या है, अपंग है। हाँ, इसके लिए हम मदन मोहन जी को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है। आपने शास्त्र में इस वर्णन तो कर दिया है कि कैसे इस अंगों का इस्तेमाल करना है, कैसे इस अंग को भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन आपके चरणों में ये विनती है, जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतिर्गति, मेरा मन बुद्धि सब कुछ मंद है, तो आप हमें शक्ति दीजिए कि इस भक्तों के संग में रहकर ये नवदा भक्ति का हम पालन कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि शास्त्र में कितना सुंदर तरीके से अम्बरीश महाराज ने बताया कि कैसे हमें भक्ति करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ प्रमाण भी दिए हुए हैं। हाँ, प्रमाण ये दिया गया है कि ये कि आप छोटे से, मतलब स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप छोटे से छोटा भी यदि कुछ अर्पण करें, हाँ, तो उससे भी मैं आपको क्या करूंगा, त्रायते महतो भयात। हाँ, तो यहाँ पर प्रमाण यह आता है कि हम देखते हैं कि अजामिल अजामिल की कथा में, हाँ, सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगा धाम किम उत श्रद्धया गृण। अरे, अजामिल ने तो अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन जब कोई शुद्ध नाम लेगा तो उसका क्या कहना, है कि नहीं? तो जब जब एक नामा नामा भास का इतना महत्व है, तो हमारे पास भक्तों का संग रहते हुए हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद हाँ ना, तो उसके बाद जब भी हम मीन्स भक्ति के अंगों का पालन करेंगे तो उसका क्या कहना। यहाँ पर एक चीज एक बताते हैं कि जैसे कि अजामिल की कथा, तो कोई कह सकता है कि अरे नहीं, आप तो शास्त्र के अनुसार बताते हैं, जो कि 2000 साल पहला, क्या पिछले कल्प में, क्या पिछले वर्ष में कब हुआ है, कुछ पता नहीं। लेकिन एक सच्ची घटना है। गुजरात में एक साधु महात्मा थे, नरसिंह मेहता का जानते हैं आप, उनके उनके लाइफ स्टोरी के बारे में। हाँ, तो जिस तरह से महाराष्ट्र में है ना, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत, हाँ, तो ऐसे गुजरात में भी एक संत संत रहा करते थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता, है कि नहीं? तो उनका उनका जीवन चरित्र जीवन चरित्र होने के बाद की घटना है। एक बार एक ड्रामा चलता रहा था, जैसे लोग ड्रामा करते हैं ना, अजामिल का ड्रामा, प्रहलाद का ड्रामा, हाँ, तो ऐसे नरसिंह मेहता जी के भक्त के चरित्र का ड्रामा चल रहा था, एक एक नाटक चल रहा था एक जगह। तो उस नाटिका में ऐसे था कि सारे, मतलब लाइक सारे चरित्र सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट, मतलब लाइक अंतिम क्षण में क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को नरसिंह मेहता का रोल दिया गया था वो आया नहीं। हाँ, तो नहीं आने के कारण अभी सब लोग मतलब क्या बोलते, चिंतित रह गए कि अब करना क्या है। नरसिंह मेहता जी का ड्रामा है, लेकिन लेकिन इस नाटिका में तो एक्ट मतलब मेन मेन हीरो ही नहीं है, तो करे क्या? तो उन्होंने सारे मतलब जो जो ऑडियंस में है लोगों को पूछा कि आप में से कोई बन सकता है जो जो, तो किसी ने मतलब हर किसी ने मना कर दिया। तब उन्होंने क्या किया, अभी अभी करे क्या, मतलब ड्रामा चालू होने के लिए, नाटिका चालू होने के लिए केवल आधा घंटा रह गया है। तब उन्होंने बोला कि मतलब उनमें से एक व्यक्ति को बाहर छोड़ा उन्होंने, उन्होंने बोला कि जाओ और बाहर ढूंढिए आप कि कोई व्यक्ति मिलता है क्या, अभी अंदर से ही व्यक्ति नहीं मिल रहा तो बाहर ढूंढिए जाके। तो वो ढूंढ रहे थे तो रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था जो कि पूरी तरह से पिया हुआ था। हाँ, उसे होश भी नहीं था कि उसका नाम क्या है, उसका क्या, लेकिन लेकिन अब करे क्या, केवल 5 ही मिनट रह गया है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उसको लेके आए, बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपको खाली वहां पर स्टेज पर रहना है बस। हाँ, तो ये व्यक्ति को क्या चाहिए था, धन चाहिए था, है कि नहीं? तो वो डायरेक्टर ने कहा ये सर आपको आपको धन दे देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली वेशभूषा हम पहना देंगे, आपको ड्रामा में बस स्टेज पर आपको खाली उपस्थित रहना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, उसको लेके आए, उसको नरसिंह मेहता जी का पहना दिए, वेशभूषा पहना दिया और उसको स्टेज पर रख दिए। ड्रामा ड्रामा हो गया अच्छी तरह से, ड्रामा समाप्त हो गया। और स्टेज ड्रामा समाप्त होने के बाद, नाटिका समाप्त होने के बाद उसका ड्रेस उतारना भूल गए, ड्रेस उतारना भूल गए। वो व्यक्ति उसी अवस्था में, उसी नशीले अवस्था में अपने घर पर चल रहा था। चलते 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 रात को 9-10 भी बज गया, रात को चलते चलते, और उस समय, हाँ उस समय उसके सामने चार लोग, चार बड़े भयानक लोग उपस्थित हुए। और कौन थे वो? यमदूत। हाँ, उनका समय आ चुका था, मृत्यु का समय आ चुका था। उनके सामने वो नशीला व्यक्ति जिन्होंने पूरे जीवन भर नियम का पालन नहीं किया, पूरे जीवन भर पाप कर्म करता रहा, और वो उस समय उनका मृत्यु का अवस्था आ गया, लेकिन सामने चार यमदूत खड़े हैं, लेकिन उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। चारों भयानक लोगों ने इनको क्या बोला कि आपका मृत्यु की घड़ी आ चुकी है, आपको चलना है। और मृत्यु की घड़ी में तो हर हर कोई व्यक्ति पूरी तरह से भयभीत हो जाए, वो सारे सारे नशे से मुक्त हो गया, वो भय से उसका नशा वगैरह सब सब गायब हो गया। हाँ, वो अवस्था में वो बोला ठीक है मुझे लेने आए तो ले लीजिए। लेकिन यमदूत पता है क्या बोल रहे हैं, यमदूत बोले हम आपको नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप इस वेशभूषा में हैं, आप पहले ये ड्रेस उतारिए फिर हम आपको लेंगे। बोले क्यों? बोले नहीं, हम जो कोई भी भक्त के ड्रेस में होता है, भक्त के उसमें होता है, हम आपको हम उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। हाँ, तो जब जब कोई वेशभूषा में है उनको स्पर्श नहीं कर सकते यमदूत, तो उनका क्या कहना, जो गुरु के आदेशों का पालन करे, भगवान ने शास्त्रों में दिए हुए नियम का पालन करे। और यही चीज हम देखते हैं कि भागवत के 6वें स्कंद में बताते हैं कि यमराज यमदूतों को ये सब इंस्ट्रक्शन, ये सब उपदेश यमराज ने दिए हुए हैं। यमराज बताते हैं कि 3 लोगों को लेके आना है और 3 लोगों को नहीं लेके आना है, मतलब तीन तीन प्रकार के लोगों को लेके आना है और 3 प्रकार के लोगों को नहीं लेके आना है। पहले बताते हैं 3 प्रकार के लोगों को नहीं लेके आना है। हाँ, कैसे लोगों को? ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवो समदृशो भगवत प्रपन्ना। साधु लोगों को नहीं लेके आना। क्यों नहीं लेके आना है? क्योंकि ये लोग भगवान के शरण में हैं। उसके पश्चात बताते हैं, एक श्लोक के बाद बताते हैं कि 3 प्रकार के लोगों को लेके आना है। कैसे लोगों को लेके आना है? जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि। हाँ, क्या बोलते हैं? तानानध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। ऐसे लोगों को लेके आओ, तानानध्वम, कैसे, जिसने जिह्वा से एक बार भी भगवान का स्मरण ने भगवान का गुणगान नहीं किया है, अपने चित्त में भगवान का स्मरण नहीं किया है और एक बार भी दंडवत नहीं किया है। हाँ, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं कि मृत्यु मृत्यु के जो यमराज हैं, जो कि सारे लोगों को दंडित करते हैं, वो स्वयं यमराज को इन शिक्षाएं देते हैं कि हाँ, अजामिल अजामिल वॉज द लास्ट इंसिडेंट। अजामिल की कथा में वो हाँ, उनका लास्ट लास्ट एपिसोड था जिसमें वो पीटे गए थे, उसके बाद वो कहीं पे भी नहीं जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर सुंदर तरीके से हमारे पास प्रमाण प्रमाण भी है कि देखिए कि कैसे स्वल्पम अपि अस्य धर्म से, मतलब कितना, मतलब छोटे से छोटा अंग का भक्ति भी हमें कितना अच्छी तरह से लाभ दे सकता है। और इसमें बताते हैं कि हमारे पास तो 24 घंटा है कि नहीं? काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये 24 घंटा है, लेकिन 24 घंटा में से 8 घंटा सोने में चला जाता है, 8-10 घंटा दिनचर्या के कार्यों में चले जाता है। प्रहलाद महाराज सुंदर तरीके से बताते हैं कि शेष हमारे पास केवल 1-2 घंटा रह जाता है जिसको हम, 1-2 घंटा 4 घंटा रह जाता है जिसको हम भगवान का आरती अटेंड करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का हाँ कथा श्रवण करते हैं। तो हाँ, तो ऐसे बताया जाता है कि भगवान भगवान के धाम में जो है, भगवान का जो समय का जो आंकड़ा है वो क्या है, इन्फाइनाइट है। हाँ, असीमित है। इन्फाइनाइट को क्या बोलते हैं, असीमित है कि नहीं? हाँ, उनका धाम असीमित है, उनके कार्य असीमित है, उनकी लीलाएं लीलाएं असीमित है, तो ऐसे बोला जाता है। लेकिन लेकिन हमारा जीवन क्या है, बहुत ही सीमित है। उनकी असीमित समय के सामने हमारा जो समय है वो काफी काफी सूक्ष्म है, और उसमें से भी आधा जीवन जा चुका है। बाकी के आधा जीवन में से भी हाँ, हर दिन का 2 घंटा 4 घंटा भी हम यदि कैलकुलेट करें तो भी वो भी काफी छोटा हो जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जितने भी शेष समय आपके पास है, हाँ, उतने मतलब उतने समय में भी आप भक्ति करेंगे फिर भी मैं आपको लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए, उनके पास समय की हाँ, समय असीमित है, सारी वस्तुएं असीमित है, लेकिन हमारा एक हाँ, एक छोटा सा अर्पण, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, हाँ, जब हम उनको अर्पण करेंगे तब भगवान हमें लेने आते हैं, हमें वादा करते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, बस हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्रों का हाँ, शरण लेना है और उनके आदेशों का पालन करना है। हाँ, तो आज हमने क्या क्या चर्चा किया था, कि आधुनिक जीवन जो जो कि आजकल के आधुनिक जीवन से हमें हमें आध्यात्म जीवन में किस तरह से प्रगति करना है। हाँ, तो हमने ये चर्चा किया कि आधुनिक जीवन में सबसे बड़ा जो लोगों को भय है वो है, सबसे बड़ा जो कठिनाई है लोगों को वो भय है। दिन प्रतिदिन किसी ना किसी वस्तु से उन्हें भय रहता है, और इस भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का भक्ति करना है। हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन क्यों अपनाना है, क्योंकि भय से मुक्ति को ना है कि नहीं? दूसरा चीज कैसे करना है, सुंदर तरीके से कवि महाराज ने बताया इस श्लोक के द्वारा कि हमें मन बुद्धि अहंकार जितने भी सारे सारे नवदा भक्ति का शरण लेना है, और इसे लाभ क्या होगा, अंते नारायण स्मृति, भगवान स्वयं लेके जाएंगे हमें धाम को, अपने धाम में। और कैसे करने के बाद, इसका लाभ प्राप्त करने के बाद, हमने ये देखा कि शास्त्र में कितनी अच्छी तरह से प्रमाण दिया गया है, न केवल शास्त्र में जब बल्कि आधुनिक आधुनिक जमाने में, आधुनिक जीवन में भी एक छोटे से छोटे भक्ति का अंग हम जब हम पालन करते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है। हाँ, और उसके बाद हमने हमने ये देखा कि कैसे जितना भी समय अपने पास हो, जितना भी समय हो हमारे पास, जितना ज़्यादा हो सके हमें भगवान भगवान का गुणगान करने में अर्पण करना चाहिए, जिससे ये मनुष्य जीवन जो कि बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते, इतने जन्मों में इतने सारे शरीर लेने के बाद ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर का सफल मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हम। हरे कृष्ण। तो इसमें जो कुछ भी जो कुछ मतलब इसके दौरान मैंने तो बराबर बताया नहीं, लेकिन लेकिन जो कुछ भी दिया गया था मैंने मैंने आप लोगों से सुन के ही ये सब किया है। और आप लोगों से प्रार्थना है कि हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इसमें से थोड़ा सा भी एक लाइन भी इसका भागवतम का पालन करें तो भक्तों का सेवा कर सके अच्छे से अच्छी तरह। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।